एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में एराही, तू कभी भी अकेला नहीं।
उसका साया सदा
जाना ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं। बात ये भूल न जाना ए राही, तू कभी भी अकेला देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक तारे। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं पिता, और हमें आत्मिक आशीष दे पिता। परमेश्वर मेरे संग हो विशेष रूप से, और तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे इच्छा अनुसार तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं, और हरेक श्रोताओं के संग पिता वे तेरे वचन को सुनकर तेरे राह में चलने सके, और हम सब तेरे राज में बचाए जा सके पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है प्रतिभाएं या तोड़े। जैतून के पहाड़ पर मसीह ने अपने शिष्यों से दुनिया में अपने दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत बताए थे जो यह दर्शाते थे कि उनका आगमन निकट है, और उन्होंने अपने शिष्यों को जागते रहने और तैयार रहने का आदेश दिया था। उन्होंने फिर से चेतावनी दोहराई, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घंटे को जब मनुष्य का पुत्र आएगा। फिर उन्होंने दिखाया कि उनके आगमन के लिए जागते रहने का क्या मतलब है। समय को बेकार की प्रतीक्षा में नहीं बल्कि मेहनत से काम करने में बिताना चाहिए। यह सबक उन्होंने प्रतिभाओं के दृष्टांत में सिखाया है, और यह दृष्टांत हम पाते हैं मत्ती 25 का 13 से 30 में। आइए हम आज इसका अध्ययन करें और इससे शिक्षा लें कि हम प्रभु का मार्ग में चल सकें। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जो दूर देश को जाता हुआ अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप देता है और एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़े, हर एक को उसकी अपनी योग्यता के अनुसार दिया और तुरंत यात्रा पर निकल गया। दूर देश की यात्रा करने वाला व्यक्ति मसीह का प्रतिनिधित्व करता है जो इस दृष्टांत को बोलते समय इस धरती से स्वर्ग जाने वाला था। दृष्टांत के दास मसीह के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने नहीं हैं, हमें कीमत देकर खरीदा गया है, कहता है 1 कुरिन्थियों 6:20 में। चांदी और सोने जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू से हम खरीदे गए हैं। यह हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 1:18-19 में, ताकि जो जीवित हैं वे अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 2 कुरिन्थियों 5:15। सभी मनुष्यों को इस अनंत कीमत पर खरीदा गया है। स्वर्ग के पूरे खजाने को इस दुनिया में डालकर मसीह में हमें सारा स्वर्ग देकर परमेश्वर ने हर मनुष्य की इच्छा, भावनाएं, मन, आत्मा को खरीदा है। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, सभी मनुष्य प्रभु की संपत्ति हैं। सभी को उसकी सेवा करने के लिए बुलाया गया है और जिस तरह से उन्होंने इस दावे को पूरा किया है उसके लिए सभी को महान न्याय के दिन हिसाब देना होगा। लेकिन परमेश्वर के दावों को सभी लोग स्वीकार नहीं करते। जो लोग मसीह की सेवा को स्वीकार करने का दावा करते हैं उन्हें दृष्टांत में उसके अपने सेवकों के रूप में दर्शाया गया है। मसीह के अनुयायियों को सेवा के लिए छुड़ाया गया है। हमारे प्रभु सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य सेवकाई है। मसीह स्वयं एक कार्यकर्ता थे और अपने सभी अनुयायियों को वे सेवा का नियम देते हैं, परमेश्वर और अपने साथियों की सेवा। यहाँ मसीह ने दुनिया को जीवन की एक उच्चतर अवधारणा प्रस्तुत की है जो उन्होंने कभी नहीं जानी थी। दूसरों की सेवा करने के लिए जीने से मनुष्य मसीह के साथ जुड़ जाता है। सेवा का नियम वह जोड़ने वाली कड़ी बन जाता है जो हमें परमेश्वर और हमारे साथियों से बांधती है। मसीह अपने सेवकों को अपनी संपत्ति सौंपता है, कुछ ऐसा जो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके। वह हर एक को उसका काम देता है। स्वर्ग की अनंत योजना में हर एक का अपना स्थान है। उद्धार के लिए हर एक को मसीह के साथ मिलकर काम करना है, आत्माओं के बचाव के लिए काम करना है। स्वर्ग में हमारे लिए जो स्थान तैयार किया गया है वह पृथ्वी पर निर्दिष्ट विशेष स्थान से अधिक निश्चित नहीं है, जहां हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। मसीह ने अपने कलीसिया को जो प्रतिभाएं सौंपी है वे विशेष रूप से पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए उपहारों और आशीर्वादों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। 1 कुरिन्थियों 12:8-11। यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों को वरदान देते हैं और हरेक को अलग अलग वरदान मिलता है। सभी मनुष्यों को समान उपहार नहीं मिलते, लेकिन स्वामी के प्रत्येक सेवक को आत्मा का कोई ना कोई उपहार देने का वादा किया गया है। सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। अपने शिष्यों को छोड़ने से पहले मसीह ने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। यह हम पाते हैं 20:22 में। फिर उसने कहा देखो मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर भेजता हूँ। 24:49 में। लेकिन स्वर्गारोहण के बाद ही उपहार अपनी पूर्णता में प्राप्त हुआ था। विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से जब तक शिष्यों ने खुद को पूरी तरह से उसके कार्य के लिए समर्पित नहीं कर दिया था, तब तक आत्मा का उंडेला जाना प्राप्त नहीं हुआ था। तब एक विशेष अर्थ में स्वर्ग की संपत्ति मसीह के अनुयायियों को सौंपी गई थी। जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो उसने कैदियों को बंदी बना लिया और मनुष्यों को उपहार दिए, लिखा है इफिसियों 4:8 में। हम में से हर एक को मसीह के उपहार के परिणाम के अनुसार अनुग्रह दिया गया है। आत्मा हर एक को अलग अलग बांटता जैसा वह चाहता है। हम पढ़ते हैं इफिसियों 4:7 में और 1 कुरिन्थियों 12:11 में। आत्मा के वादे की उतनी सराहना नहीं की जाती जितनी की उसकी करनी चाहिए। इसकी पूर्ति उस तरह से नहीं होती जैसा होनी चाहिए। यह आत्मा की अनुपस्थिति है जो सुसमाचार मंत्रालय को इतना शक्तिहीन बना देती है। शिक्षा, प्रतिभा, वाक्पटुता, हर प्राकृतिक या अर्जित प्रतिभा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के बिना किसी भी दिल को छुआ नहीं जाएगा। कोई भी पापी मसीह के लिए नहीं जीता जाएगा। दूसरी ओर, यदि वे मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आत्मा के उपहार उनके पास हैं, तो उनके सबसे गरीब और सबसे अज्ञानी शिष्यों के पास एक शक्ति होगी जो दिलों पर असर करेगी। परमेश्वर उन्हें ब्राह्मण में सर्वोच्च प्रभाव के कार्यान्वयन के लिए माध्यम बनाता है। और भी अन्य प्रतिभाएं दिए गए हैं। दृष्टांत में आत्मा के विशेष उपहार ही एकमात्र प्रतिभा नहीं दर्शाए गए हैं। इसमें सभी उपहार और अक्षय निधि शामिल हैं, चाहे वे मौलिक हों या अर्जित, प्राकृतिक या आध्यात्मिक। सभी को मसीह की सेवा में लगाया जाना चाहिए। उनके शिष्य बनने में हम अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, जो हम हैं और जो हमारे पास है सबको। ये उपहार वह हमें शुद्ध और उत्कृष्ट करके लौटाता है, ताकि हम अपने साथी मनुष्यों को आशीर्वाद देने में उनकी महिमा के लिए इनका उपयोग कर सकें। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने उसकी योग्यता के अनुसार दिया है। प्रतिभाएं मनमाने ढंग से नहीं बांटी जाती। जिसके पास 5 प्रतिभाओं का उपयोग करने की क्षमता है, उसे 5 मिलती है। जो 2 से अधिक का सुधार कर सकता है, उसे 2 मिलती हैं। जो केवल 1 का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकता है, उसे 1 मिलती है। प्यारो, किसी को भी इस बात का विलाप करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें अधिक उपहार नहीं मिले हैं, क्योंकि जिसने प्रत्येक व्यक्ति को विभाजित किया है, वह प्रत्येक सौंपे गए कार्य के सुधार के समान रूप से सम्मानित होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जिस व्यक्ति को 5 प्रतिभाएं सौंपी गई हैं, उसे 5 का सुधार करना है। जिसके पास 1 है, उसे 1 का सुधार करना है। परमेश्वर अपेक्षा करता है कि मनुष्य के पास जो है उसके अनुसार प्रतिफल मिले, ना कि उसके पास जो नहीं है। 2 कुरिन्थियों 8:12। दृष्टांत में जिसे 5 तोड़े मिले थे, उसने जाकर उनसे लेन देन करके 5 और तोड़े कमाए, और वैसे ही जिसे 2 तोड़े मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। प्रतिभाएं चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह नहीं है कि मुझे कितना मिला है, बल्कि यह है कि मेरे पास जो है उसका मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी सभी शक्तियों का विकास करना ईश्वर और अपने साथियों के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपनी क्षमता और उपयोगिता में वृद्धि नहीं कर रहा है, वह जीवन का उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। मसीह में विश्वास की घोषणा करते हुए हम अपने आप को वह सब बनने की प्रतिज्ञा करते हैं जो हमारे लिए स्वामी के लिए कार्यकर्ता के रूप में संभव है, और हमें हर क्षमता को पूर्णता के उच्चतम स्तर तक विकसित करना चाहिए, ताकि हम जितना संभव हो उतना अच्छा काम कर सकें। प्रभु के पास करने के लिए बहुत बड़ा काम है और वह भविष्य के जीवन में सबसे ज्यादा उन लोगों को देगा जो वर्तमान जीवन में सबसे ज्यादा वफादार स्वेच्छा से सेवा करते हैं। प्रभु अपने खुद के एजेंट चुनते हैं और हर दिन अलग अलग परिस्थितियों में वह उन्हें अपनी कार्य योजना में एक परीक्षण देते हैं। अपनी योजना को पूरा करने के लिए हर सच्चे दिल से किए गए प्रयास में वह अपने एजेंटों को इसलिए नहीं चुनता कि वे परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि उसके साथ एक संबंध के माध्यम से वे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर केवल उन्हीं को स्वीकार करेगा जो उच्च लक्ष्य रखने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं, और जो लोग ईश्वर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उन्हें शरीर के हर अंग और मन की गुणता की पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। सच्ची शिक्षा हर कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों की तैयारी है। यह ईश्वरीय सेवा के लिए शरीर, मन और आत्मा का प्रशिक्षण है। यह वह शिक्षा है जो अनंत जीवन तक कायम रहेगी। प्रभु हर मसीह से हर क्षेत्र में कुशलता और क्षमता में वृद्धि की अपेक्षा करते हैं। मसीह ने हमें यह आश्वासन नहीं दिया है कि चरित्र की पूर्णता प्राप्त करना आसान है। एक महान स्वांगीन चरित्र विरासत में नहीं मिलता, यह हमें संयोग से नहीं मिलता। एक महान चरित्र मसीह के गुणों और कृपा के माध्यम से व्यक्तिगत प्रयास से अर्जित किया जाता है। ईश्वरीय प्रतिभाएं मन की शक्तियां देता है। हम चरित्र बनाते हैं, यह स्वयं के साथ कठिन कठोर युद्धों द्वारा निर्मित होता है। वंशानुगत प्रतियों के विरुद्ध संघर्ष के बाद संघर्ष करना होगा। हमें खुद की बारीकी से आलोचना करनी होगी और एक भी प्रतिकूल विशेषता को बिना सुधारे नहीं रहने देना होगा। कोई भी यह ना कहे कि मैं अपने चरित्र के दोषों को दूर नहीं कर सकता। यदि आप इस निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप निश्चित रूप से अनंत जीवन प्राप्त करने में असफल रहेंगे। असंभवता आपकी अपनी इच्छा में निहित है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। असली कठिनाई एक अपवित्र हृदय के भ्रष्टाचार और ईश्वर के नियंत्रण में प्रस्तुत होने की अनिच्छा से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग जिन्हें परमेश्वर ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए योग्य बनाया है वे बहुत काम नहीं करते क्योंकि वे बहुत कम प्रयास करते हैं। याद रखें कि आप कभी भी अपने द्वारा निर्धारित किए गए उच्च मानक तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर अपना लक्ष्य ऊंचा रखें और कदम दर कदम, भले ही यह दर्दनाक प्रयास आत्मत्याग और बलिदान द्वारा हो, सीढ़ी की पूरी लंबाई चढ़े, प्रगति की राह पर चढ़े। स्वामी की महिमा के लिए चरित्र की हर कृपा को विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी बने। दानियल की तरह खड़े हो जाओ। वह वफादार राजनेता के समान, वह ऐसा व्यक्ति जिसे कोई प्रलोभन भ्रष्ट नहीं कर सका। ईश्वरीय समानता के अनुसार बनाया गया चरित्र ही एकमात्र खजाना है जिसे हम इस दुनिया से अगले दुनिया में ले जा सकते हैं। जो लोग इस संसार में मसीह के निर्देशन में हैं, वे हर दिव्य उपलब्धि को अपने साथ स्वर्गीय भवनों में ले जाएंगे, और स्वर्ग में हमें निरंतर सुधार करना है, उसे बढ़ाना है। तो इस जीवन में चरित्र का विकास करना कितना महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय बुद्धि उस मानव एजेंट के साथ काम करेगी जो दृढ़ विश्वास के साथ चरित्र की पूर्णता की तलाश करता है, जो कार्य में पूर्णता तक पहुंचेगी। इस कार्य में लगे हर व्यक्ति से मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे दाहिने हाथ पर हूं। प्यारो, कितना ही सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहारा के लिए हमारे साथ है, हमारे दाहिने ओर खड़े हैं हमें मदद करने के लिए। आइए हमें जो वरदान दिया गया है उसे इस्तेमाल करें, उसे बढ़ाएं परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करेंगे, उसका आत्मा हमें ताकत देगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से मिल जाए और उसके वरदानों को बढ़ाए, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जो वरदान तूने हमें दिया है उसे तू बढ़ा, हमें मदद कर कि हम उसका सही उपयोग कर सके और लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सके, तेरा महिमा के लिए उसका उपयोग कर सके पिता। पिता परमेश्वर हमें तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे, तेरा पवित्र आत्मा से भर दे कि हम तेरे दानों को सही उपयोग कर सके और तेरा महिमा ला सके। सबों को आशीष दे परमेश्वर मसीह के नाम से सुना ग्रहण कर।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।